गुरु के विचारों को, गुरु के आचार को ये ग्रहण करना ही गुरु पदाश्रय है। यदि आपने वो मंत्र भी लिया और उसका आचरण गुरु जी के चरण पर चल करके यदि नहीं किया, गुरु जी हैं निर्गुण और हम हैं यदि तामसी, तो आश्रय लेना हुआ
अपने भावों को संपूर्ण रूप से दूर करके गुरु जी के भावों को लेना ही ये उनका साधन है, ऐसा लेना है। कल मंत्र जप रहे हैं, क्या मंत्र का तात्पर्य है ये सब कुछ नहीं जानते, मंत्र किस लिए है, क्या चीज है, कुछ भी पता नहीं। उसे हजार वर्ष भी करते रहे तो विशेष कुछ जानते, उनका प्रदर्शन करके उनके भावों को समझ करके जो भी हम मंत्र जपे इत्यादि, बहुत थोड़े दिन में चित्त निर्मल होकर के वो हमारे हृदय में स्फूर्ति होगा। तो स्वरूप इंद्रिय प्रभु मिले इंद्रिय गांव आविष्ट है यहां पर एक गान अस्वादन, महाप्रभु जी अपनी समस्त इंद्रियों को उनके इंद्रियों में मिलाते और उनके गानों को सुन रहे हैं और तब गान के अनुरूप में महाप्रभु जी के तब तरह के भाव उदित हो रहे हैं। भावे रास्ते आवे से प्रभु भूमि पे बसिया, तजन से भूमि लिखे अधम पहिया, इन भावों के आप में आविष्ट होकर के महाप्रभु जी क्या कर रहे, मानो विरहणी के रूप में हो गए। तो विरहणी जिस प्रकार से गृह में गठित होकर अपने पैरों से भूमि में लिखती है, नीचे देखती है, उसी तरह तर्जनी से भूमि अधम कहूंगी, नीचे झुक करके और कुछ भी करेंगे, ऐसे कोई मतलब नहीं है, ऐसे भी करेंगे। अंगुली से खत्म होते ज्ञानी का मतलब वैसे लिख रहे हैं अपने अंगुली से, मैंने विरह नहीं होता, अंगुली कहीं मैंने भाव न हो जाए इसलिए उसको मना कर रहे हैं काम होता है। भय नहीं तो करे निरारे प्रभु का, उनके हाथों को पकड़ लेते हैं, प्रभु भाव अनुरूप स्वरूप लगाए जब ये रस कहां करे मुक्ति मान, प्रभु के भाव को अनुरूप ही खुद दामोदर के कीर्तन होते हैं, कभी जय देके, कभी गोविंद गीत गोविंद के पर, कभी श्रीमद भागवत के श्लोक, कभी मैथिल को की विद्यापद इत्यादि के बाद पदों को लेकर के ठीक अनुरूप जैसा उनका भाव है ऐसे वो सुनाते हैं। श्री जगन्नाथ देव देखे श्री मुख कमल तार ऊपर सुंदर नयन युवा चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का केवल मुख कमल देख रहे हैं, बस इतना है। अब मुख कमल में भी देख रहे हैं नयन युवा और कहीं हाथ पैर पर उनका इधर कहीं भी ध्यान नहीं, एकदम निविष्ट हो गया। जैसे गोपियां कहती हैं कि आज तो हमारा परम सौभाग्य है कि कृष्ण को आपाद मस्तक हमने पूरा देखा, तो विशाखा जी ने कहा ये तुम्हारा सौभाग्य है, किंतु हमारी सखी और हम लोगों का इतना दुर्भाग्य है कि हमारा हमारी आंखें जहां जिस अंग में कृष्ण की पड़ जाती है बस वहीं चिपक जाती है। कभी महाप्रभु जी का ऐसा ठीक आंखों में, यदि हाथों पर ध्यान जाता तो क्या होता, पता ये कुछ जगह इधर उधर जाता है कमल नयन के आंखों में ही एकदम वो चिपक जाती है। सूर्य किरण मुख करे झलमल, रस चल रहा है ना और सूर्य की किरणें वहां पर पड़ रही हैं, कभी मेघा छन्न हो जाता है और कभी सूर्य की किरणें चमकने लगती हैं, क्षण में धूप पलक में छाया तो वो वहां पर ऐसे वहां पर अभी बरसात खूब जोरों से हो रही है, तो इस तरह से कहें सूर्य की किरणों चमक पर झलमल झलमल कर रही है। माला बस दिव्य अलंकार परिमल, प्रभु के हृदय आनंद सिंधु छिव, प्रभु के हृदय में आनंद सिंधु छिव, कृष्ण आज वृंदावन में पधार रहे हैं, कहां से पधार रहे हैं, द्वारका भेज तो है किंतु आ रहे हैं कोई क्षेत्र से आ रहे हैं हम लोगों के साथ में जिंदा उन्माद प्रेम के कारण उनमें उन्माद हो गया झंझावा बड़ी जोर से आंधी आने पर सबको अपसेट कर देता है उथल पुथल कर देता है उनके हृदय को उथल पुथल कर देता है ये प्रेम खने तत खने उठी गो आनंद उन्मादे उठाए भावे रंग नाना भाव सैन्य उपजिल युद्ध अंग भावोदय भाव शांति समृद्धि साबल्य संचारी शाक्ति की स्थायी भाव प्रबल ये सब भक्ति सामने सिंधु या उद्यम निर्गन यहां पर लेकर के पूजा दी समझने वाला समझेगा अथा समझना बड़ा मुश्किल है कहते हैं कि एक साथ में उन्माद झंझावात ये सब ऐसा उठा नाना प्रकार के नए नए भावों की संधि हो रही है नए नए प्रकार के भाव कभी एक भाव दूसरे भाव को दबा देता है कभी भावों का युद्ध चल रहा है कौन बलवान है जो बलवान है वो दुर्बल को दबा देता है भाव उदय मैंने भावों का उदय होता है कैसे भाव उदय कृष्ण को देखा उसमें कृष्ण को देखते ही वृंदावन याद आए उसमें राष्ट्र सब याद आए और कृष्ण को दर्शन करने से गोपियों के हृदय में जैसी भावनाएं आते हैं उनके हृदय में भी वैसे ही भाव भाव शांति भाव शांति कहते हैं एक भाव तब एक जैसे कि समुद्र में तरंग उठती है जब वो चली जाती है तो दूसरी आती है और इधर से वो लौट करके जाती है
भाव सावल्य
तो उसमें से एक उधर वाली जो आ रही है ना उसको नीचे वाली जो जा रही है ऊपर कर देती है वो ऊपर से वो प्रबल है ना इसलिए उसको लांग करके नीचे आ
सावल्य
तो इसलिए एक भाव दूसरे भाव को शांत करना भाव सावल्य संधि क्या दोनों भाव में मिलने का संचारी मैंने भाव समुद्र को संचरित करता है वह संचारी इसी को कहते हैं अनुभाव हृदय में जो भाव होते हैं कृष्ण संबंधित जो भाव जो सत्व से उत्पन्न होते हैं और भीतर के भावों को अपने लक्षणों से सूचित करते हैं वह है अनुभाव शक्ति जो सत्व से उत्पन्न होते हैं वो शक्ति स्थाई माने पांच प्रकार के जैसे स्थाई भाव हैं भाव प्राबल्य भावों की प्रबलता प्रभु व शरीर जनों सुविधा हिमाचल प्रभु शरीर जनशुद्ध हिमाचल महाप्रभु जी का शरीर कैसा है जैसे हिमालय स्वच्छ एकदम बर्फ के समान हिमाचल भाव पुष्प द्रुम भाव क्या है पुष्प द्रुम पुष्पों के वृक्ष हैं चाहे पुष्पित सकल उसमें ये सब पुष्प लगे हैं कौन कौन संचारी अनुभाव
भाव
ये सब देखे थे आपस से सवार समान जो देख रहे हैं सवार समान माने सवार माने क्या महाप्रभु के भक्तों का सवार माने जनरल पर्सन नहीं वो लोग नहीं समझने किसलिए महाप्रभु जी के आंखों से आंसू आ रहे हैं किसलिए रोमांच हर्ष आ रहे हैं ये नहीं समझते वो देख रहे हैं बस देख रहे हैं और उनको ये सब देखने में रुचि नहीं है वो क्या कर रहे हैं रस का रस्सी खेलते हैं और जय जगन्नाथ जगन्नाथ को और महाप्रभु जो भक्त हैं इनको कुछ कुछ समझते हैं वो भाव अभी तो करके रस्सी हाथ तोड़ दिया और महाप्रभु जी के पास आकर के दिन बस इसी में आ गए प्रेमामिष्ट दृष्टि प्रभु सिंचे सवार प्रेमामृत दृष्टि दृष्टि से, प्रेम की अमृत की दृष्टि से अपने भक्तों का महाप्रभु जी सिंचन कर रहे हैं। कैसे सिंचन कर रहे हैं? यहाँ तो भाव में मग्न है और वो संचयित होकर के भक्तों के हृदय में जाता है और उनका चित्त प्रफुल्लित हो जाता है, संचयित हो जाता है। जगन्नाथ से वो जतोराज पात्रवान यात्री लोक मिला चल बाकी जत जान प्रभु नित्य प्रेम देखी है चमत्कार कृष्ण प्रेम उपजिल हृदय। मैं तो समझता हूं कि उस वक्त रथ यात्रा में जो लोग आए हुए हैं वो कैसे लोग होंगे और जन्म जन्मांतरों में कभी रथ में यदि आए होंगे या उसकी बात सुनी जैसे हम लोग सुन रहे हैं और ऐसे ही सुनते सुनते हृदय में एक भावना हो गई, ओ हमारा जन्म क्यों नहीं महाप्रभु जी के समय में हुआ जी, इसको देखा जैसे नरोत्तम ठाकुर जी ने कहा है उस समय मेरा कर्म जन्म ले। अब मैं हम लोग चाहते हैं कि उसी समय में हमारा जन्म हुआ जब महाप्रभु रथ को खेचवा रहे हैं और उनके ऐसे भाव हो रहे हैं, हम लोग भी उसको देखें। ऐसी प्रबल भजन करते करते प्रबल आकांक्षा जब हृदय में होगी तो इसके बाद में महाप्रभु कृपा करके उसमें उन लोगों को जो साधारण आदमी है उसमें जन्म दे करके रथ यात्रा में उनको आकर्षण किया योग माया के द्वारा। इसलिए उस समय के जनसाधारण भी साधारण नहीं, कौतूहल के लिए क्यों नहीं वहां पर गए। इसलिए वो सब योग माया के प्रभाव से उस समय महाप्रभु जी की लीला में समझे। इसलिए वहां पर जितने भी यात्री हैं, लोग हैं, नीलाचलवासी हैं, प्रभु नित्य प्रेम देखी है चमत्कार कृष्ण प्रेम उपजिल हृदय सवार। प्रेमी नाचे गाय लोग करे कोलाहल, प्रेम में सभी लोग कोलाहल कर रहे, प्रभु नित्य कलय यात्री चौगुण मंगल। रथ के दर्शन से जो फल होता है उसे चौगुना फल महाप्रभु जी के इन भावों को दर्शन करने से सब यात्रियों को हुआ। अन्य रेखी का काल जगन्नाथ फलदार प्रभु नित्य देखी सुखे कलिदास स्वप्न, उसे जो सुकृति होगी ना उनके इस प्रसंग को सुनने से वही सुकृति होगी। यदि श्रद्धा के साथ में सुना जाए तो इसका भी कार्य वही होगा, वैसे ही सुकृति होगी। प्रभु के नित्य को देख करके सुखे कलिदास मंथर जगन्नाथ भी उस नृत्य को देकर के मंथर गति से चलने लगे, धीरे धीरे चलने लगते। कबू सुख है नित्य रंग देखे रक्त राखी से कौतुक ये देखी जैसे ही साक्षात, जिन्होंने उसको देखा है वही इसका साक्षी है। इसलिए सनातन हमारे रूप गोस्वामी ने ऐसा वर्णन किया है। ये मंथर नित्य प्रभु करते करते प्रताप रुद्र आगे चली लागीला पड़ी थे, वो प्रताप रुद्र के सामने पहुंच गए और उसी समय भावी शो करते उन्हें पर गिरने लगे। प्रताप रुद्र ने डरा तो जरूर डर गए किंतु फिर भी उन्होंने उनको ऐसे पकड़ लिया, कहा कि देखते प्रभु बाध्य हो, उनको देखते ही प्रभु जी को बाध्य हो गया। और राजा देखी महाप्रभु करण ने भिक्का छीस छीस छी, इसका हमको संग हो गया, इसका स्पर्श हो गया, विषय स्पर्श है जो हमारा विषय का स्पर्श हमको हो गया।
पहले जब स्पर्श हुआ था उसमें अच्छी चीज नहीं
थी, तो उसमें तो अवश्य ही उनका ज्ञान ही नहीं था जी लिया, बिना ज्ञान के ही उत्पत्ति का करते क्यों ये श्लोक के गुण के कारण। अवश्य नित्यानंद हरिदा अवसावधान काशीश्वर गोविंद आदि चिर अन्यता, उस समय में काशीश्वर गोविंद इत्यादि अन्य स्थान में थे, नित्यानंद भी कुछ असावधान हो गए, इसलिए इन लोगों ने देखकर के महाप्रभु जी को पकड़ा नहीं, इसलिए इन्होंने पकड़ ली। तब महाप्रभु जी किसी करने लगे, यद्यपि राजा ने देखी हरि से मने प्रसन्न हैया के तारे मिली बारे, यद्यपि झाड़ू उनका देना देख करके ये प्रसन्न हो गए लक्ष्यों का काम झाड़ू देना, किंतु जगन्नाथ जी के लिए किया इसलिए उन पर प्रसन्न हो गए, इसलिए उन पर कृपा करना चाहते हैं, किंतु ऊपर से ऐसा दिख रहा है मानो वो विषयी है और उनको स्पष्ट से उनका चित्त अशुद्ध हो। यदि किसी विषय के स्पर्श से यदि ऐसा महाप्रभु जी कह रहे हैं तो उसका अन्न खाने से और उसका संग करने से क्या होगा? विषय किसको कहते हैं? जो विषयों के प्रति आसक्त है, अपने शरीर के प्रति आसक्त है, भंजन के प्रति आसक्त है, यहां तक कि अपनी आसक्ति को पूर्ण करने के लिए भगवान की आराधना भी करते हैं, उनको कहते हैं भगवान की आराधना के द्वारा भी अपने भोग्य वस्तु को पाया जा सकता है। अधिकांश गृहस्थ लोग इसीलिए कहते हैं हमारे घर में सुख और शांति रहे, सभी अच्छी तरह से विघ्न बाधा न हो, इसलिए ठाकुर जी की पूजा करते हैं। अधिकांश कृष्ण भक्ति के लिए, स्वरूप के मंगल के लिए ऐसा नहीं करते, कृष्ण के चरणों में एकांतिक के लिए नहीं करते, इसीलिए यहां पर बतला रहे हैं। यहां पर फिर भोग लगा, अब भोग लगाने के बाद में सबको दिया गया, रथ यात्रा, रथ वहां पर पहुंचा, हेरा पंचमी हुई और हेरा पंचमी के बाद में प्रतिदिन महाप्रभु जी उनके यहां दर्शन करने आते और फिर समुद्र में स्नान करने जाते, बड़े सुख से वहां पर बताया जैसे कि कृष्ण वृंदावन में आए। फिर अंतिम दिन कौन सी थी? आज ही, आज ही है ना, आज ही के दिन
दशमी,
दशमी के दिन, आज दशमी है, यही मत क्रीड़ा के जब प्रभु अष्ट दिन, आठ दिनों तक वहां पर क्रीड़ा के, आज दशमी चले थे प्रतिपदा के दिन और आठ दिन तक तो वहां पर किया, आठ दिन के बाद नौवे दिन
किया,
आठ दिन दिने जगन्नाथ के भीतर भीतर भी जाए अपने मंदिर में वो दौड़ रथ पर जगन्नाथ चले निजालौर। अब ये रथ पर चढ़ करके अब चल रहे हैं कहां? निजालौर अपने घर में, कहां? नीलाचल में जा रहे हैं। पूर्वोक कैला प्रभु लैया भक्त गौन परम आनंदे करें निर्तन, मां प्रभु जी सब भक्तों को लेकर के खेच करके फिर लौटा करके वहीं पर ला रहे हैं मंदिर, उनकी भावना क्या है?
वृंदावन ले जा रहा हूं,
वृंदावन ही ले जा रहा हूं, ये भावना नहीं है कि मैं वहां से सुंदराचल गया था वृंदावन और वृंदावन से उनको लेकर के वहां आ रहा, क्यों? आविष्ट थे। यदि उनको पता होता है कि मैं वृंदावन से कृष्ण को लेकर के द्वारका में जा रहा हूं तो महाप्रभु जी नहीं कर, किंतु उस समय भी परम आनंद करण नर्तन नर्तन और कीर्तन करके उनको दिया रहा। इसीलिए भक्त लोग जिनका कुछ ज्ञान रहता है आविष्ट नहीं होते, वो लोग उनके रत्न में कुछ आनंदित नहीं होते, वो देखते हैं कि वृंदावन से वो रथ लौट करके वहां जा रहा है, नीलाचल में जा रहा है, द्वारका में जा रहा है, इसलिए उनको इसमें रुचि नहीं होती। पहला दिन तो देख लेते हैं, इसके बाद में देखा तो देखा, नहीं तो नहीं देखा, उसमें उनकी रुचि नहीं रहती है। जगन्नाथ पुनः पांडु विजय हो गया, पुनः उन्होंने पांडु विजय कराया और एक एक गुप्ती एक बूटी पट डोरी दहा टूटी गया, जब उनको खेच करके लाया जा रहा था तो उनकी रस्सी पुरानी होने से टूट गई थी, पांडु विजय पूरी फटी फूटी जाए, जगन्नाथ पड़े तुला पूरी बूढ़ी पलाए, पुनर् ग्रामी रामानंद सत्तराज था तारे आज्ञा लीला प्रभु कन्या सक, उन्होंने सम्मान करके उनको आदेश दिया जो प्रतिवर्ष तुम नई नई डोरी लेना जगन्नाथ जी का डोरी तो फटफट करते उड़ रही है, झूला उड़ रही है, उसको वो पकड़ पट वहां पर बन जाएगा, तो डोरी जरा कठिन है बनाना, इसलिए उनके यहाँ पात अति छोटा था, इसलिए पात के द्वारा रस्सी बनाकर के वहां से लाई। एक पट डोरी तुम्हें हो जजमान पति वर्ष आनवे डोरी करी आने जगन्नाथ जी की सेवा कर। ऐसा बोली दीरा तारे छिंडा पट डोरी एक टूटी ही डोरी का एक टुकड़ा उनको दे दिया जिसका से बनता उसमें बहुत सी डोरियों को मिला करके एक डोरी मोटी डोरी बनाते। पहले अलग अलग से डोरियां बनती फिर बहुत से मिला करके उसमें तब एक डोरी बनती। यहां देखी करीबे डोरी अति दृढ़ कर एक पट डोरी से हर शेष अधिष्ठान इसमें शेष का अधिष्ठान है और रथ में पृथ्वी देवी का स्थान है। दस मोटी हैया जो सिने भगवान भाग्यमान से सत्यराज रामानंद सेवा आज्ञा पाइया हर परम आनंद परम आनंदित होकर के प्रतिवर्ष को ऐसे ही रस्सी बनाकर खिलाते प्रतिवर्ष का गुंडी चाहते भक्त बने समय पट डोरी लै आए थे पति पर तब जगन्नाथ जी आई वर्षा सिंहासन जगन्नाथ जी को सिंहासन पर बैठाया गया। महाप्रभु घरे आई जाए लैया भक्त का महाप्रभु जी अपने भक्तों को लेकर के अपने घर में यही भक्त भक्त बने यात्रा दिखाई दो भक्त बन लैया वृंदावन से चैतन्य गोसाई लीला अनंत पार सहस्त्र बदने जा नहीं पाया। महाप्रभु लीला सहस्त्र सहस्त्र धारा वाली है शस्त्र बदन जो शेष है उनकी लीला को भी नहीं पूरा दान कर सकते। ये कथा हमने किस लिए की श्री रूप रघुनाथ पदे जा रहा चैतन्य चरितामृत पढ़े थे रूप और रघुनाथ के पद में जिनका आश है पिछली आश है रूप रघुनाथ जी के जितने भी ग्रंथ हैं उनमें उनके भावों का वर्णन है। उन्होंने अपने भावों का वर्णन पूरी रूप से उसने किया है जो किस लिए साधन भजन करते हैं साधन भजन का उद्देश्य क्या है कैसे वो साधन भजन करते हैं उनके उपास्य कैसे हैं उनकी उपासना कैसी है गोपियों के भाव कैसे हैं ये सब का उन्होंने वर्णन किया है। अब उन्हीं भावों को प्राप्ति करने के लिए जिनके हृदय में आता है उन लोगों के लिए चैतन्य चरितामृत का कथन मैंने किया। इन भावों को पढ़ करके ये समझेंगे रूप और रघुनाथ जी की ही भावना इसमें नहीं है हम उसको सहज रूप से ऐसे पा सकते हैं। इस प्रकार से महाप्रभु जी चाहिए देंगे पहले तो निमंत्रण लिया था अद्वैताचार्य और साधम भट्टाचार्य और सब सिद्धार्थ पंडित जितने गृहस्थ लोग हैं और बड़े बड़े भक्त लोग हैं उनका निमंत्रण किया। प्रधान प्रधान के घर में एक एक दिने से भी तीन लेने से भी उनका चार महीना पूरा। अब जो थोड़े जो रह गए अधिकांश लोग पांच सात मिल करके एक दिन जगन्नाथ जी का प्रसाद ले आते हैं और अपने घरों घर में इस प्रकार से करते चार महीना समझ लेने कहां चला गया। चार महीना तक कोई भी भक्त वहां से नहीं जाए। चार महीना पूरा होने के बाद में महाप्रभु जी ने उन सबको बुलाया और बुला करके एक एक भक्त का वर्णन कर रहे हैं गुण ये कैसे भक्त हैं और उनको धीरे धीरे पूजा कर रहे हैं। सब भक्तों का गुण दान किया है इसमें पुलिनवासी भक्तों का कुछ प्रश्न भी है ये हमारा क्या कहा अब रख जाता से लौट करके हम लोग क्या करेंगे। महाप्रभु जी ने उनको संक्षेप में बतलाया घर से लौट यहां से घर में लौट करके कृष्ण की सेवा और नाम संकीर्तन वैष्णव सेवा और भगवत सेवा ये तीन काम करना वैष्णव सेवा नाम कीर्तन नाम कीर्तन तो ठीक है ये तो दर्पण मार्जनम इत्यादि में और भगवत सेवा भी भगवत अर्चन से लेकर के भावमयी सेवाएं ये सब है कृष्ण के प्रति। किंतु वैष्णव के संबंध में पूछा कि कौन वैष्णव है उनकी कैसी सेवा होनी उन्होंने एक एक वर्ष में एक एक प्रकार की व्याख्या करके पहले वर्ष में कनिष्ठ वैष्णव
दूसरे वर्ष में मध्यम और तीसरे वर्ष में उत्तम वैष्णवों का लक्षण बतला करके उनकी सेवा कैसी होनी चाहिए ये सब बतला है। तीन प्रकार के वैष्णव लोग माने गए हैं, कनिष्ठ मध्यम और
बिहार को मूल श्रद्धा से कनिष्ठ,
तो उन लोगों के लिए एक एक वर्ष में वो शिक्षा दी। जिनकी श्रद्धा कोमल है, कोमल है मैंने क्या अविपक्व नहीं हुई है, गुरु जी ने मंत्र दिया कृष्ण का, कृष्ण का भजन करने को लिए हम कहा, किंतु बचपन से जो हम ओम नमः शिवाय कर रहे हैं इसका हम क्या करेंगे, हृदय से वो चीज निकल नहीं रही, एकंकता आ नहीं रही है, और इधर में गुरु जी की बात की अवहेला भी नहीं कर सकते, अब क्या है, बुद्धि अभी स्थिर नहीं है। ठाकुर जी की सेवा करते हैं किंतु वैष्णव इत्यादि का कुछ, यहां तक कि गुरु जी की भी सेवा नहीं उतना मन से करते हैं, ठाकुर जी की सेवा में उनकी स्थिति और ठाकुर जी कोई बस यही समझते कि यही शादी नियमित रूप में उनका जगाना सेवा इत्यादि का ये पूरा चीज नहीं है, किंतु फिर भी ये मध्यम अधिकार नहीं, बल्कि जो वैष्णव भगवान की सेवा करते हैं और भगवान का जो परिचय देने वाले जो वैष्णव हैं उनकी यदि सेवा होगी ना और ठाकुर जी की सेवा होगी तो ये मध्यम अधिकार। इसमें भी मध्यम अधिकारी का भक्तों का बतलाया
मैत्री कृपा अपेक्षा जब मध्यम
श्रद्धा के अनुसार में कनिष्ठ मध्यम और उत्तम अधिकारी का विचार होता है।
शास्त्र युक्ति नहीं जाने भीड़
शास्त्र युक्ति नहीं जाने
भीड़ श्रद्धावा
किंतु श्रद्धावा
मध्यम अधिकारी से
श्रद्धा है किंतु अभी तत्वज्ञान इत्यादि का सिद्धांत परिपक्व नहीं है, जैसे हम लोगों में अभी बहुत ऐसे ही हम लोग हैं। श्रद्धा है कृष्ण की सेवा छोड़ करके हम दूसरों की सेवा नहीं करेंगे ये बात तो ठीक है, किंतु शास्त्र युक्ति बिल्कुल नहीं, कुछ पूछ देंगे तो नहीं आएगा। और जिन लोगों की शास्त्र युक्ति भी सुदृढ़ है और श्रद्धा भी सुदृढ़ है ये कौन है
आप उत्तम अधिकारी
उत्तम अधिकारी
राजा उत्तम अधिकारी से सारे
अपने संग से दूसरों को भी उस स्तर में ला दें ये उत्तम अधिकारी। मध्यम अधिकारी ऐसा नहीं है, उसकी श्रद्धा तो दृढ़ है किंतु सब विषय में अभी पारंगत नहीं है, किंतु धीरे धीरे होते उत्तम, वो उत्तम अधिकारी वो पहले मध्यम में कनिष्ठ मध्यम मध्यम और अंत में इस प्रकार से तीनों के विचार। मध्यम अधिकारी का कुछ कर्तव्य है, कनिष्ठ अधिकारी का कोई कर्तव्य नहीं है, वो उतना जानता ही नहीं है इसलिए कर्तव्य अज्ञानी कुछ है, किंतु श्रद्धालु कुछ कुछ है इसलिए उसके लिए ये नहीं बनता है, किंतु मध्यम अधिकारी के लिए विचार प्रधान बनता है। गुरुओं के लिए बतलाया क्या
प्रेम
मैत्री
उपेक्षा,
लोगों के प्रति भगवान के प्रति प्रेम, जीवों के प्रति प्रेम नहीं, सांप के प्रति दुष्ट के प्रति ये प्रेम नहीं, भक्तों के प्रति भी कृष्ण वाला प्रेम नहीं लगेगा, इसलिए कृष्ण के प्रति प्रेम और भक्तों से मैत्री
प्रेम मैंने आसक्ति
बोलने
प्रेम मैंने आसक्ति भक्ति संदर्भ
भक्तों के साथ में क्या होगा मैत्री। तीन प्रकार के भक्त हैं, तीन प्रकार के भक्तों में तीन प्रकार की उनकी मैत्री होगी, जो उत्तम कोटि के हैं
सेवायुक्त
सेवायुक्त मैत्री, मध्यम वाले के प्रति
मैत्रीयुक्त
मैत्री शक्तपूर्वक मैत्री और कनिष्ठ के प्रति दयापूर्वक ये तीनों में आता है। और इसके बाद मैत्री कृपा जो कि अनभिज्ञ व्यक्ति है किंतु
श्रद्धालु
उनके प्रति तत्व ज्ञान देकर देना हरि कथा सुनाना ऐसी दया है। और जो विरोधी हैं उन पर कृपा करने की जरूरत नहीं, कृपा नहीं देंगे, तुम पर कृपा कर देंगे, इसलिए उनकी उपेक्षा माने उनसे संग मत करो। कौन नहीं संग करेगा? किंतु उत्तम वाला क्या करेगा? उसकी इच्छा पर निर्भर है, वो कर सकता है नहीं भी कर सकता। उनके ऊपर में शास्त्र का कोई अंकुश नहीं है। और उत्तम अधिकारी क्या करेगा? वो सर्वत्र ही भगवत बुद्धि से देखेगा, अपने उपास्य को सब में देखेगा और अपने उपास्य में ही सबको दर्शन करेगा। इसलिए उत्तम अधिकारी है, वो किसी को सजीव उपदेश नहीं करेगा, वो उपदेश नहीं करेगा। क्यों? अरे सभी तो भगवान का सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, इसलिए वो किसी को उपदेश। मध्यम अधिकारी जानता है कि ये सेवा करते हैं, ये सेवा है, इसलिए। किंतु मध्यम अधिकारी अपनी कथाओं से किसी को भगवान की तरफ ले जाएगा, इतना तो करेगा, ये तो कृपा करेगा। किंतु जब खास कृपा करने का अधिकारी है उत्तम अधिकारी। तीन प्रकार के उत्तम अधिकारी भी कौन कौन?
वंचित कसाय, निर्भित कसाय, प्राप्त पार्षद पालवत।
जो प्राप्त परिकर दशा है, जैसे नारद जी भगवान के परिकर है, उनका कोई जड़ शरीर नहीं है, सत्य में भगवत आविष्ट रहते हैं, वो उनकी कृपा। अब दूसरे नहीं तो जिनका माया इत्यादि सब दूर हो गया है, आसक्ति दूर हो गई, किंतु मूर्छित है, कभी भी उठ सकती भी है, हो सकता है इसका नष्ट भी हो जाए, इसलिए ये लोग मूर्छित कसाय सुखदेव गोस्वामी। और
नारद इसलिए दासी पुत्र से मूर्छित,
पहले वाला जो है मूर्छित कसाय नारद जी का, और उद्धव जी का
नहीं,
सुखदेव गोस्वामी जी का निर्भूत कसाय, उनका कसाय सब, और नारद जी का तो सब प्राप्त परिकर। इसलिए ये तीन लोग यदि कहेंगे उसके तरफ में देख लें, बस उनका उपदेश। मध्यम अधिकारी अपने संग से क्रमशः तत्व ज्ञान का उपदेश देकर के बजाज चला करके, और उनको मध्यम अधिकारी ही गुरु है, उत्तम अधिकार वाले उनका गुरु इत्यादि से वो कुछ नहीं करते। हाँ, कभी जल्दी मध्यम अधिकार में आ जाएंगे, जैसे नारद जी ने किया वैसा कुछ, तो कभी मध्यम अधिकार में आ सकते हैं। इसलिए महाप्रभु जी की सब ऐसे ही पूजाएं हैं, कभी वो मध्यम अधिकार जैसा दे करके जगत का कल्याण की और उत्तम अधिकार जैसा हो करके लोगों में भक्ति का संचार। आज भी
श्री गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णाय नमो यं प्रव्रजन्तमन्ते तमते सतेष्टं द्वैपायनो विरकातरयाति भाव पुत्रे तन्मयतया करो किलेदो तं सर्वभूतहृदयं मामन्तु तवैवास्मि तवैवास्मि नमामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तन्मयम्।
भजन रहस्य पाठ कर रहे थे, साधारण रूप से बहुत स्वच्छ न साधारण रूप से श्रद्धा पूर्वक भजन करते हुए अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचि और आसक्ति के बाद में भाव उत्पन्न होता है। भाव के परिपक्व होने पर प्रेम का प्रादुर्भाव होता है, प्रेम प्रकट होता है। इस प्रेम से ही भगवान का साक्षात्कार या मिलन होता है, भगवान प्राप्त होता है। बिना प्रेम के हुए भगवान नहीं मिलते। जिनके हृदय में प्रेम नहीं उत्पन्न हुआ, भगवान का दर्शन बड़ा कठिन है, नहीं है। इसीलिए भगवान प्रथम अवस्था में दर्शन नहीं देते, प्रेम की परिपक्व अवस्था होने पर ही उनको दर्शन देते। इसलिए पहली अवस्था में भगवान के प्रति विरह भगवान ही खुद जगाते हैं, जब उसको विरह में भगवान के लिए वो तड़पने लगता है, जब वो किसी प्रकार से हरा नहीं सकता, तब उसको दर्शन देता है। जैसे नारद चरित्र में हम लोगों ने देखा है, प्रहलाद के लिए देखा है, और सब साधकों के लिए देखा जाता है। मीराबाई का भी देखो जो कितना तड़पन था, कितना तड़पती थी विरह, इसलिए पहले प्रभु उस विरह को जगा करके फिर उसको दर्शन देते हैं। इसलिए प्रेम को दो विभाग में विभक्त कर दिया है, पहला विप्रलम्भ भाव और दूसरा बतलाया भगवान को दर्शन करके जो आनंद होता है, भगवान की सेवा करने से जो आनंद होता है। यहां पर हमने पहले सब चीज का वर्णन किया है। अब भक्ति विनोद ठाकुर जी उसमें से अत्यंत विरह में कोई तड़पने पर भगवान कैसे दर्शन देते हैं इसका उदाहरण देते हुए कह रहे, जैसे गोपियां थी, गोपियों से मिले और मिलने के बाद में कुछ देर के बाद में जत राष्ट्रम तब है, गोपियां अत्यंत तन्मय होकर के उनको ढूंढने लगी और विरह में तड़पने लगी। फिर जब उनसे रहा नहीं गया गोपियों से, तो वो फिर लौट करके यमुना के किनारे प्रार्थना मई रोदन करने लगे, रो रो करके प्रार्थना करने लगे। कृष्ण उस प्रार्थना को सुन करके रह नहीं सके, उनके बीच में फिर प्रकट हो गए, उसी को ये वर्णन कर रहे हैं। ताथाम आदिभूत सौरी स्मयमान मुखान गुजर काम बढ़ता सगरी साक्षात मन 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 मथ। इसी चीज को करें, साधक को भगवान के लिए कैसी तड़पन होनी चाहिए। उस समय गोपियां हंस करके खाने पीने में भूल गई थी, इसलिए साधक उस समय में सब कुछ छोड़कर के तन मन की सबको सुदूप होकर के केवल मात्र उनके विरह में जब तड़पेगा तभी भगवान का दर्शन संभव है। ऐसे नहीं हुआ जैसे अभी हम लोग हैं ना, खा पी करके बड़े आनंद से जीवन लाभ कर रहे हैं, माताएं बच्चे को दूध पिला दिया और बिस्तर पर लेटा दिया, वो थोड़ा सा सो गया। यदि वो नहीं सोता है मां के लिए इधर उधर करता है, तो एक लोला हाथ में एक झुनझुना लोला खिलौना उसके हाथों में रख देती और उसी से वो मान करके खेलने लगता है, मुख में देने लगता है, तो मैया उसको छोड़ करके अपने किसी काम में चली जाती। और यदि बच्चा किसी तरह से नहीं मानता है, रोता ही रहता है, तो फिर उसको गोपी से उठा करके उसको अपना दूध पिलाती है। ऐसे ही भगवान को भी समझो, भगवान के तो और भी कुछ काम है, इसलिए जब तक ऐसी तड़पन पैदा नहीं होगी, जब तक हम संसार में आबद्ध रहेंगे, संसार भी अच्छा लग रहा है, वो भी करना अच्छा लग रहा है, तब तक नहीं दर्शन दे। ऐसी अनुभूति हो मेरा भगवान के लिए, भगवान के लिए खुद छटपटा करके रोएंगे, संसार कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, तब ऐसा होगा। साधारण रूप में देखो, धृतराष्ट्र किस लिए नाम हुआ, राष्ट्र को राज्य को धर रखा है और उसके लिए चोरी बेईमानी झूठाई जो कुछ छल छंद कभी कर सकते, और उनके पुत्र भी ऐसे। पांडवों को उन्होंने लक्षाघर में जलवाया, दुर्योधन ने उनको विष दिया, तो अभी धृतराष्ट्र ने ही ये कहा जैसे देखो पांडव लोग धार्मिक हैं, ऐसा मत करो, ऊपर के दिखलाने के लिए भीष्म पितामह के सामने तो कुछ कह देते हैं, भाई अच्छी तरह से रहो, किंतु कुछ दंड नहीं देते। विदुर ने कहा इस दुष्ट को कुलंगार को घर से निकाल दो, राज्य से वंचित कर दो, उनकी भी बात नहीं सुना, बल्कि उनके सामने ही दुर्योधन ने अपने मित्रों के साथ में उनको राज्य से बाहर कर दिया और वो धनुष और मुकुट सब छोड़ करके चले। यही उसके सत्यानाश का कारण हुआ, तो ये सब कुछ करके भी धृतराष्ट्र को कोई ज्ञान नहीं होगा। जन्मांध था, जन्म से अंधा था, किंतु राजनीति में बड़ा कुशल है। धर्म और प्रज्ञान माने धर्म की बुद्धि उसकी भ्रष्ट हो गई। अपने पुत्र के प्रति स्वार्थ बरसकर ये सब काम कर रहे, काम कराने का फल यह हुआ अपना वंश तो गया ही, एक सौ पुत्र मारे गए, उनके नाती भी मर गए, दिया बाती जलाने लायक कोई नहीं रहा। पांडवों की कम क्षति नहीं हुई, उनकी भी बड़ी हानि है, उनके भी पुत्र मारे गए, हितैषी मारे गए, बंधु बंधु मारे गए, दोनों वंश स्वाहा हो। पांडवों के वंश में कुल पांच पुत्र, और अभिमन्यु उस समय में गर्भ में था, बस अभिमन्यु ने बल्कि महाराज जी कुल गर्भ थे, बस यही बचे, फिर इनसे इसका वंश हुआ। तो जिस समय में उनको राज्य मिल गया, उनके पांच सप्त पुत्र मारे गए हैं, अब वो रो रहा है। हस्तिनापुर में पांचों पांडव गए और उनके चरणों में गिरे और उनको प्रसन्न करने लगे कि हमारा वंश समाप्त हो गया, अब आप कृपा करें हमारे ऊपर में, अब हम लोगों के साथ में चले, आप रोइए मत, हम लोग आपकी सेवा करें। ये ठीक है, जैसा होना तो हुआ। भीम ने ये सब किया, मैं सत्यता भूल करके अब भीम को जरा गोदी लेना चाहता हूं, आलिंगन करना चाहता हूं। भीम को बुलाया, कृष्ण वहां पर थे, कृष्ण पहले से ही एक लोहे की मूर्ति भीम का बनाकर ले आए। उन्होंने कुछ समझ करके और लोहे की मूर्ति उसके गोदी में दे दिया और वो एकदम क्रोधित होकर के एकदम जोर से उसको ऐसे दबाया कि लोहे की मूर्ति चूर्ण विचूर्ण हो गई। जबकि वो लोहे की मूर्ति जब चूर्ण विचूर्ण हो गई तो लोगों ने दिखा दिए, यदि भीम होता तो क्या होता, लोहे की मूर्ति को चूर्ण विचूर्ण कर दिया तो भीम होता तो ये पीस करके आटा बन जाता, शत्रु बन जाता। देखा जी, इतना बल इसको है, मरने के बाद में
नहीं, जब ही पकड़ो तभी दे देते, दो चार घुसा
नहीं होता, उस समय उनका काम काल नहीं चलता। तो अब इतना होने पर फिर रोने लगा, अरे हमने भीम को मार दिया। भीम एक रहा साबित था, वो भी चला गया। भीम को पहले से वो कुछ स्नेह भी करते थे, उसे डरते भी थे, भीम उनको पहले से ही बचपन से ही सेवा करता था। अब वो रोने लगा, तब कृष्ण ने समझाया जो भीम मरा नहीं है, ये तो लोहे की मूर्ति। तब वो कुछ प्रसन्न हुआ, तब भीम ने कहा अब जो कुछ हो गया अब तो क्षमा करके आप हमारे साथ में हम लोगों के पास में रहें हस्तिनापुर में, और यहीं पर आप खाइए पीजिए और भगवान का भजन। तो राजी हो गया, गंधारी भी राजी हो गई, दोनों इन लोगों के साथ में हस्तिनापुर में आए। उन लोगों ने इंद्रप्रस्थ छोड़ दिया और आ गए हस्तिनापुर में, राजा हो गए और इनको पांव भी करने लगे, खिलाने भी नहीं उनको खिलाता था। एक दिन विदुर जी घूमते घामते इतने दिनों के बाद जब सुना ये युद्ध हो गया है, कौरव लोग सब मारे गए हैं, धृतराष्ट्र पांडवों के साथ में है, तो वो आ गए। इसी समय उनकी भेंट उद्धव जी से हुई थी। उद्धव जी के बाद में भेंट के बाद में यहां आए और यहां से फिर चले गए बद्रीनारायण, वहां जाकर के विदुर से इनकी भेंट हुई। तो जब यहां आए तो पांडवों ने इनका बड़ा आदर किया। पांडव ने कहा आज हमारा परम सौभाग्य है, आप जैसे महात्मा बिना किसी कारण के हमारे घर में आए। बिना कारण के क्यों आते हैं?
दूसरे लोग नहीं समझे, वो तो समझेंगे ये हमारा कुछ लेने के लिए है। और सच्चे लोग जो है धार्मिक वो समझेंगे आज हमारा उद्धार करने के लिए है, हम लोग तो भगवान का भजन नहीं करते, इसलिए इसका उपदेश कुछ देने के लिए हमारे परम मंगल के लिए है। युधिष्ठिर महाराज इस प्रकार से कह रहे थे, जब रात हो गई, जब सब लोग सो गए, तो ये विदुर जी गए धृतराष्ट्र के पास। इनको देख करके वो रोने लगा, बूढ़ा डकर डकर करके रोने लगा, तुम्हारी बात हमने नहीं मानी और हमारे पुत्रों ने तुमको घर से बाहर कर दिया, आज इसी का फल ये हुआ कि हमारी ये दुर्दशा। जब वो डकर डकर के रो रहा था, उन्होंने कहा ये अंधे, अब तुम यहां पर किस लिए पड़ा हुआ है घर में, जिस भीम को और पांडवों को तुमने मारने की चेष्टा की, षड्यंत्र किया और जिसको मारने के लिए युद्ध हुआ, आज उसी वही रोटी तुमको कुत्ते की भांति दे रहा है और कुत्ते की भांति तुम रोटी खा रहा है, तुमको लज्जा नहीं आती उसका दिया हुआ रोटी खा रहा है तू, तो अब किस लिए बचा है, किस लिए जिंदा है, इस घर में क्यों पड़ा है, बतलाओ तो। लड़के तो मारे गए, बहुआ विधवा हो गई, घर सुना हो गया, जिसमें तुम राजा की तरफ में रहता था, आज तुम वहां पर भीख मंगी रोटी के ऊपर में तुम जीवित रहता है, तुमको लज्जा नीचे सुने का कि मैं क्या करूं। उन्होंने तो कहा तुम एक बात करो, अभी मेरे साथ में घर से निकल चलो, अभी मैं चलता हूं, हाँ हमारे साथ निकल चलो, तो मैं आंधा कैसे चलूंगा, अरे मैं तुम्हें रील रखिया पकड़। गंधारी ने कहा हम भी चलेंगे, कुंती जी सुन रहे थे, उन्होंने कहा हम भी चलेंगे, और कोई तीसरा व्यक्ति नहीं, प्रशंसा को लेकर के रात में दरवाजा खोल करके राजभवन से निकल गए और निकल करके हरिद्वार पार होकर के ऋषिकेश में पहुंचे। हरिद्वार का लिखा है गंगा
तुम ब्रजवासियों को चाहे रुलावो या मारो, अथवा जो इच्छा सो करो, किंतु तुम उनको जीवन के रखा जैसे मर के नहीं जाने देते, जो उनको बार बार दुख ये सब सहारे उनको मार देते, तुम सब भगवान नहीं हो तो उनको खत्म कर देते। बस अभी एक पेपर में आया इंग्लैंड में एक कोई महिला अपने पति को बहुत प्रेम करती, करीब करीब 60-70 वर्ष की उम्र में उनके प्रेम में कभी कमी नहीं आई, 60 वर्ष के बाद में वो जल्दी बीमार पड़ा और ऐसा बीमार पड़ा दिन रात कष्ट से कराहता था रोता, तो उसने गोली निकाली अपने पिस्तौल और उसे उनकी छाती में किया करे थे। इसके बाद में पुलिस आई उसको पकड़ करके ले गई, ले जाने के बाद में पूछा कि क्यों हमारा इनसे हमारा इतना प्रेम, इनके दुख को मैं देख नहीं सकता, मैं इनका दुख देख करके कराहना और रोना देख करके मुझे बड़ा दुख होता था, इसलिए मैंने देखा जिस इनके जीवन लीला ही समानी का दुख होता बस उनको पीछे क्या होगा कोर्ट ने क्या हरा दिया ये मुझको पता नहीं, किंतु गोली से मुझको उड़ा दिया ये प्रेम ने ऐसा होता है। गांधी जी ने कहा तू ये दरिया मर रही प्राण नहीं निकलो, अच्छा तो इसको गोली मार दो, आजकल नया निकला है फॉर्मूला, माता पिता को पास बहुत बूढ़े हो गए हैं, बुढ़िया बुढ़िया को बुढ़िया और बूढ़े बहुत कष्ट सा रहे हैं और हमको कर वो अपने साथे तो कोई बात नहीं, अब अपनी आंखों से उनका दुख नहीं देखा जाता, इसलिए गोली से मार दो सहज जी बस खत्म हो जाए, हम लोग निरपुरुष हो जाए। कह रहे हैं जैसे चाहे ब्रजवासियों को मारो या हिलाओ, अपनी मैया को क्यों दुख दे रहा है,
कुमार जी, कुमार अजय अन्न दे अन्न संग अन्न देश ब्रज जने कबू नहीं भाई ब्रज भूमि छरते नरे तुम्हारा देखिले मरे ब्रज जन नहीं होबे उपाय। तुम्हारे ये अन्न दे तुम्हारा ये बेच दे करके कितना आनंद होता है। वाह वाह, सुने का मुकुट पहन रखा है, गले में सोने के हाथ लगे हुए हैं और हाथों में धनुष बाण या तलवार ये सब था। कितना सुंदर आपका ये दिख रहा है, कहने से हमें तनिक भी ये अच्छा नहीं लगता। हमारे दुख का यही प्रधान कारण है, आपने सब कुछ बदल दिया, देश बदल दिया, माता पिता जाति देश सब कुछ आपने बदल दिया। तुम्हारे अन्न देश अन्न संग अन्न देश, तुम्हारा अन्न देश अब छत्रियों का देश जगवंशियों का देश हो गया। अन्न संग अब आपके प्रधान मित्र बने हैं, श्री रामा जी आपके मित्र बने हैं, अर्जुन सखा बने हैं, भीम नकुल सहदेव आपके संगनी बनी हैं, रुक्मिणी सप्तभामा प्रभृति आपकी सखी सहेली बनी है, द्रौपदी आपके ये सब मित्र हो। अब क्षत्रिय लोग, गोपों का कोई भी स्थान नहीं है, कोई गोप सखा नहीं, गोपी आपकी सखी नहीं, मैया आपकी गोपी नहीं, बाप आपका गोप नहीं, सब हो गए अब क्षत्रिय हो गए। और अन्य देश ब्रज को आपने छोड़ दिया, चले गए कहां, समुद्र के खारे नमकीन पानी से यहां पर भरा हुआ है, नमक का तृप्त और कुछ नहीं, हवा भी कैसी चलती है नमकीन हवा, और वहां पर खूब बाग बगीचे होंगे। नीचे हम लोग गए जब पहली बार परिक्रमा गुरु जी के साथ में गया, बहुत पहले मथुरा मठ के होने से बहुत पहले हम लोग गए थे, वहां पर पानी खरीदना पड़ता था, एक घड़े का पानी का दाम 10-15 रुपए। देखा एक बड़ा भारी कुआं बना हुआ है द्वारका में, और वो काफी नीचा पड़े 60-70 फुट से भी अधिक है, और पानी इतना बड़ी मुश्किल से उसमें से पानी लाते, वो भी पूरा शुद्ध नहीं, उसमें भी थोड़ा थोड़ा खा लिया। ये तो यहां ब्रज में छोड़ करके चले गए, यमुना नदी वहां छोड़ करके चले गए, समुद्र के किनारे ब्रज ने कभू नहीं भार। ब्रजवासी ऐसा नहीं चाहते हैं, आप वहां जाकर के दुखी और स्वस्थ, हम लोग नहीं चाहते, आप प्रेम के साथ में धुंधा बन रहे हैं। ब्रजभूमि छाड़ी तेनारे तुमाना देखिले मरे ब्रज ने की हो गए उपाय। कहते हैं कि आप ये कह सकते हैं कि चलो जैसे हमारे वहां पर 16,108 महिषियां हैं, तुम लोगों के लिए भी एक एक राजभवन बना दें, सबके लिए, नंद बाबा के लिए, यशोदा मैया के लिए, और तुम सब लोगों के लिए घर बना देंगे, बड़े प्रेम के साथ में हमारे साथ में वहीं पर रहना। तो गोपियां कहती हैं ब्रजभूमि छाड़ी तेना, तुम छोड़ करके हमें चले गए ये संभव है, किंतु हम लोग वृंदावन को छोड़ करके नहीं चले, क्यों, इसलिए तुम्हारे गोपाल रूप की जावती स्फूर्ति है वृंदावन में है, समझ रहे हो, मोर मुकुट धारण करके अपने को गोपाल कहने वाले और गोवर्धन की कंदराओं में वृंदावन की राक्षसस्थली में बरसाने के वो गौरव बन के कौन खाती साकरी खोर में और सब मयूर कोटि में राधा कुंड में सूर्य कुंड में सूर्य की पूजा इत्यादि में आपकी जितनी स्मृतियां भरी पड़ी हैं इन स्मृतियों को छोड़ करके हम आपको साक्षात इस रूप में क्षत्रिय राजा के रूप में और क्षत्रिय वेश में क्षत्रिय छाज में यह द्वारका में हम देखा इसलिए हम वृंदावन को छोड़ करके ना कभी आता आना नहीं चाहते। क्यों आना नहीं चाहते? मान ले कि ये गोपियां सब यदि वृंदावन को छोड़ करके वहां पर चली जाएंगी, सप्तभामा रुक्मणि इत्यादि को छोड़ सकेंगे? जल्दी राज दरबार में बैठे हुए, राजभवन में बैठे हुए हैं कृष्ण, अब बड़ी श्रृंगार करने वाली सोने के आभूषण से लगी हुई वो सब सारी उनकी क्रियाएं आएंगी, तो ये क्या करेंगे? उनसे मिल सकेंगे उस समय? कहे हम विवाहिता हैं, आप लोगों के साथ में विवाह हुआ, तो ये क्या कहेंगे? या गोपियां ही क्या कहेंगे? गोपियों को हटा दें, एक बार भी कहा यहां से हट जाओ, नहीं कहेंगे। तभी हमारी यदि उपेक्षा होगी तो क्या स्थिति हमारी? इसलिए हम यहीं पर जैसे तैसे बनी हुई मरेंगे, किंतु वृंदावन को हम नहीं छोड़ सकते। इसलिए गुलाब का फूल या कमल का फूल अपनी डंडी में ही रहने पर वो उसकी स्वभाव, उसकी स्वभाव सुगंध उसमें रहती है, वो प्रफुल्लित रहता है, और उसके वृंद से हटा दो तो वो मुरझाता हुआ एकदम सूख जाएगा। इसलिए हम वृंदावन को अपने वृंद को छोड़कर के वहां पर हम नहीं जाते। एक जगह में मैं इस प्रकार का ऐश्वर्य भाव, स्वकीय भाव और पार्थिव भाव दोनों एक साथ में एक ज्ञान में दो तलवारें नहीं रह सकती, इसलिए हम लोगों का छोड़ना। और हम वृंदावन को छोड़कर के रह नहीं सकते, जा नहीं सकते, और तुम्हें देख नहीं देखने से हम जीवित भी नहीं रह सकती। यह बात ठीक है। अब बतलाओ हम लोग क्या करें? अब आप ही बतलाइए। वृंदावन को हम नहीं छोड़ सकते और आपके देखने भी नहीं मर, और आप रहेंगे द्वारका वृंदावन में आएंगे, अब मेरे लिए क्या उपाय है? तुम्हें ब्रज सीमा, ब्रज राजे प्राण धन, तुम्हें सकल ब्रजे संपद, तुम ब्रजराज के प्राण स्वरूप जीवन हो, ब्रज तुम्हें ब्रजे ब्रज के तुम जीवन, और उसमें ब्रजराज जो हैं उनके तो प्राण ही हो तुम, तुम्हें सकल ब्रजे संपद, बल्कि सारी संपत्ति तुम्हें, कृपा करो तुम्हार मन ठीक है, आपका चित्त भी कृपा करो, कृपा से आत्र हो जाता है, द्रवित हो जाता है। आशी जियाओ ब्रजजन, ब्रजे उदय कराओ निज पर। आप कहते हैं कि मैं क्या करूं, तो हमारे साथी में आप चलें। यदि तुम हमारे प्रति आत्र होते हो तो हमें और ब्रजवासियों को जीवित करने की इच्छा है तो आप हमारे साथ में वृंदावन, अपने चरणों को वृंदावन में ले चले, वहां पर तो दिक्कत, और वही हमारा मन है, इसलिए हमारे मन में ही आपने कहा कि ध्यान करो, तो ध्यान में मन में ही तो भगवान के चरण दिखते हैं, तो हमारा मन तो वृंदावन है, वृंदावन में चलिए, अपने आप वो काम हो जाएगा। सुनिया राधिका रबानी प्रेम ब्रज प्रेम मन यानी भावे व्याकुलित देह मन, ब्रज लेवर प्रेम सुनी अपना केरी मानी करे कृष्ण ताराय आश्वासन। सुनिया राधिका राधिका जी की ऐसी वाणी को सुन करके ब्रज प्रेम मने आने, ब्रज के लोगों का प्रेम उनके स्मरण में आया, स्मरण में तो है ही है किंतु व्यक्त नहीं करते थे, व्यक्त करने वाला कोई व्यक्ति नहीं था, आज गोपियों को देख करके उनका हृदय भर आया और वो व्यक्त कर उनका भाव उसी भाव में वो भर गए और अत्यंत व्याकुल होकर के कहने लगते। तब करें प्राण प्रिय सुन मोरे यही सत्य वचन, राधिका जी को उसका उत्तर देने लगे, करें हे प्राण प्रिय श्रीमती राधिके, मैं जो कुछ कह रहा हूं मैं सत्य कह रहा हूं, अपने हृदय की बात कर रहा हूं, तुम इसको दूसरे रूप में मत ग्रहण कर, तुम्हार सबार स्मरणे छुरु मोई रात्रि दी, मैं तुम लोगों का स्मरण करके दिन रात रोता हूं,
किंतु किसी को कह नहीं पाता। बृहद भगवतामृत में सनातन गोस्वामी ने इन सबका बहुत सविस्तार वर्णन किया है। सब समय कृष्ण उनका स्मरण करते हैं, गोपियां जितना करती हैं ये भी स्मरण करते हैं, किंतु गोपियां अपने मन की दुख परस्पर में बांट देती हैं। किंतु कृष्ण के पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपने मन की बात किसी से दूसरे से कह सके। क्यों कहा? क्यों? सभी लोग क्षत्रिय हैं, वो सभी जादव हैं, इसलिए इस प्रेम के संबंध में उनकी कोई भी धारणा नहीं है। इसलिए वो लोग कहीं जिसे भाई उनसे क्या संबंध है तुम्हारा, शादी तो तुम्हारी हुई है कि सत्यभामा रुक्मिणी इत्यादि के साथ में, उन गोपियों से तुम्हारा क्या बाल व्यपाल में प्रेम तो था वो खत्म हो गया, इसलिए कुछ उसका मूल्य ही नहीं देंगे। इसलिए दिन रात में उस दुख में तड़पता हूं, मोर दुख ना जाने कोनो जन, किंतु हमारा दुख कोई भी नहीं जानते। यहां तक कि तुम लोग भी शायद जानती हो कि ना, नहीं जानती हो। ब्रजवासी जतो जन माता पिता सखागण सब है मोर प्राण सख, ब्रजवासी जितने भी हैं माता पिता सखा सब मेरे प्राण के समान प्रिय हैं। और तार मध्य गोपीगण और सब तो प्राण के समान प्रिय हैं, और उनमें से जो ब्रजवासियों में भी जो गोपियां हैं साक्षात मोर जीवन, साक्षात रूप में मेरे प्राण के समान के जीवन के समान, और तुम ही मोर जीवन मेरे जीवन, और तुम हमारे उसमें भी जीवन के थे तुम जीवन। तुम्हार सवार प्रेम रसे आमा के करी देवसे आनी तुम्हार अधीन केवल। ये कहां सब हो रही है बातें, महाप्रभु जी सोच रहे हैं ऐसी बातें, कृष्ण को रथ पर देख करके पीरा में तड़पते हुए राधा जी के भाव से इस चीज को अनुभव कर रहे हैं महाप्रभु, और अपने ही आप भावना में कह रहे हैं तुम्हार सवाल प्रेम रसे अमा के परिजन, तुम्हारा जो यह प्रेम है जो पराकाष्ठा कहां तक महाभाव रूप अधि रूप तक चला गया है, मादन मोदन तक चला गया है, उसने हमको अब तुम लोगों के वशीभूत कर दिया। तुम्हार सब छाइया अमा दूर देश लइया राखिया छे दूर दैव प्रवत, मैं तो चाहता हूं कि अभी तुम लोगों के पास ना आ जाए, किंतु हमारे दुर्दैव ने वो इतना प्रबल है कि तुमको हमारा जो जीवन का जीवन जो है उसको छुड़ा करके हम लोग को विलग कर दिया। ये काल का प्रभाव है। यही बात कुंती जी को वसुदेव जी ने भी कहा, यही बातें सर्वत्र भी है। एक पिता के चार लड़के हुए, बचपन में एक साथ में खेले कूदे पढ़े लिखे मैया बाप के पास में, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि यही बच्चे चारों पिता माता के वृद्ध होने पर ये अलग अलग चले जाए, अलग अलग जाना ही नहीं परस्पर विरोधी भी हो जाएंगे, विरोध भी नहीं रहने पर परस्पर प्रीति नहीं रहेगी, बड़े भैया ने छोटे भाइयों का लालन पालन किया, कोई कल्पना कर सकता है उसको? यही संसार की रीति, दुर्दैव काल यह सबको अलग अलग कर दे। कोई भी नहीं चाहता है कि मैं दुखी रहूं या कोई दुखी रहे, तो भी हो जाता है, यही सब काल का प्रभाव। कृष्ण स्वयं भगवान होते हुए भी श्रीमती जी से ऐसा कह रहे हैं, किंतु यहां पर यह बात ठीक नहीं, उनके लिए दुर्लभ क्या है, गोपियों को वो सांत्वना नहीं दे सकते हैं मिलने पर, वो दुखी और हो जाती है, विरह हो जाए मिलने में भी, इसलिए ये उनको दुर्दैव कर रहे हैं। रास में अंतर्ध्यान किस लिए है, गोपियों को सांत्वना नहीं दे सके, सभी
कोई सौभाग्य मत में छलाने लगी, किसी ने मत कर मान में मतमत तो हो गई। देखा जैसे ये सब बिगड़ गया, फिर तमाशा सब राशि नहीं होगा, तो आप क्या करें? तो दैव कारण उनको अंतर ध्यान होना पड़ा। इसे ये भी कृष्ण के लिए प्रेम ऐसा ही टेढ़ा होता है। कारण कृष्ण प्रिय प्रिय संग बिना, प्रिय प्रिय संग बिना नहीं, ये सत्य प्रमाण। कहते हैं कि यह बात ठीक है, शास्त्रों में भी ऐसा है। मनुष्य की तो बात क्या, पशु पक्षियों में भी ऐसा देखा जाता है। जो प्रिय के विरह में प्रिया और प्रिया के विरह में प्रिय जीवन को छोड़ देते हैं, इसके एक ही दो प्रमाण नहीं है, हजारों प्रमाण है। एक सर्प है, सर्प को किसी ने मार दिया, या तो सर्पणी वो बदला ले ली, किंतु थोड़ी देर के बाद वो भी मर जाए, ऐसा भी देखा जाता है। पशु पक्षियों के जोड़े में भी देखा जाता है, तो कौन पक्षी त्याग कर, या पति मर गया तो वो भी मर जाएगी, और प्रिया मर जाएगी तो वो मर जाता है, ऐसा देख। सावित्री सत्यवान का और किसका, अनुसुईया का, तो दूसरे तरफ का वो ये पति वाला ये भाव, वो तो भव और भक्त। सावित्री सत्यवान वो बंगाल में ही क्यों, इधर नहीं,
नल दमयंती,
हाँ नल दमयंती, ये सब का देखा जाता। ये भी मोह है, ये भी मोह है, संसार का बंधन का कारण है। यदि कृष्ण में ऐसा भाव हो तब तो जीवन बन गया, नहीं तो इसका मूल्य शास्त्रकारों ने किन के लिए दिया है, मोह में अंध जो फंसे हुए हैं संसार में, उन लोगों के लिए कार्य जगत में चलने के लिए एक ऐसी नीति होनी चाहिए, बस यही सब। परमात्मिक उसमें कुछ लाभ नहीं,
नीति शास्त्र से हो
जाए। इसीलिए द्रौपदी कुंती तारा अहिल्या मंदोदरी इनको लोगों में भी सबसे श्रेष्ठ माना, पंचकन्या माना। इनका स्मरण करने से भी जगत के लोगों का कल्याण होगा, क्योंकि भगवान को ही अपना परम पति जी सब माना। तो प्रिया के बिना प्रिय और प्रियतम के बिना प्रिया जीवन निरक्त, यह बात तो ठीक है, नहीं ये सत्य प्रमाण है। किंतु मोर दशा सुने जबे तारे एक दशा होवे यही भय गुणे रखे, हमको भी मर जाना चाहिए था तुम लोगों के विरह में, और तुम लोगों को भी हमारे विरह में मर जाना चाहिए। प्रेम का यही रीति है, जैसे मछली पानी को अपना जीवन समझ, मछली को पानी में से अलग कर दो साथ ही साथ में सहस्रार्थी भी मर जाए, किंतु पानी उसके लिए मरता है कि नहीं ये देखना है। पानी मरेगा या मरता दिया तो कौन देखता है, इसलिए वहां पर तो नहीं, किंतु हां मछली की तरफ से देखा जाता है। यह बात तो सत्य है, किंतु परस्पर मरते किस लिए नहीं है। कृष्ण सोचते हैं कि यदि मैं मर गया है तो गोपियां तो बिना मारे मरी, और गोपियां किस लिए नहीं मरती, यदि हम मर जाएंगे तो वो आकर के देखेंगे ब्रज सुना है कोई भी गोपी नहीं है तो वो मर जाए, इसलिए एक दूसरों के लिए प्राण रखते हैं। शेर सती प्रेमवती सीता जी को रामचंद्र जी ने वन में छोड़ दिया, सदा के लिए छोड़ दिया, तो 14 वर्ष के लिए नहीं, आजीवन छोड़ दिया। लक्ष्मण जी को निर्मोही बन करके काय भेज जाओ वाल्मीकि आश्रम के पास में छोड़ देना, वो छोड़ करके चले आए। छोड़ना तो हृदय से नहीं चाहते थे, उनके लिए भी यही दुर्दैव समझिए, अच्छा सीता जी ने रामचंद्र जी के पास में आने के लिए कोई प्रयत्न किया या नहीं? उस प्रयत्न किया, बस उनकी खाती जो उनके पास में थी, दो पुत्र जो थे उनको रखा, उनको सहेजा, उनको जीवित रखा, उनकी उनको पाला पोषा, किंतु एक बार भी कोई प्रयत्न नहीं किया कि मैं उनसे मिल जाऊं। ये है पतिव्रता। जबकि हमको छोड़ने से वो सुखी है, बहुत आनंद से, ठीक है सुखी है, किंतु रामचंद्र जी भी सुखी नहीं। इसलिए रामचंद्र जी की बातें तो लौकुश से कहती हैं, किंतु हमारे वो पति हैं ये कभी नहीं। रामायण सुना रही हैं, वाल्मीकि जी भी उनको रामायण पढ़ा रहे हैं, सारा रामायण उनको पढ़ा दिया, किंतु ये नहीं बताया कि तुम राम के दोनों बेटे हो, या ये सब कुछ नहीं बताया, तुम मैया हो, हमारे गुरु जी ये वाल्मीकि जी, बस इतना ही सब, कोई गुरु जी। अंत में जिस समय पता लगा ना, अंत में पता लगने पर क्या हुआ, सीता जी पताल में चली गई, किंतु कभी भी प्रयत्न नहीं किया कि रामचंद्र जी हमारे पास, उनके पास में जाने से उनको कष्ट होगा, ऐसा होना चाहिए। ये गोपियां भी ठीक वैसे, गोपियां और भी अधिक, इसलिए कहते हैं हमारी दशा सुन करके गोपियां मर जाएंगी, और हम गोपियों की दशा सुन करके जब वो गोपियां मर गई हैं तो हम भी मर जाएंगे। इसलिए दोनों प्रिया प्रियतम दोनों के लिए जीवन धारण करके रखते हैं। दुख को सहज करना ये बड़ा भारी कठिन है, मर जाना सहज है। आप लोग विचार कीजिए, भरत जी ने कहा कि तुमको मैया कभी नहीं कहेंगे, कैसे कितना बड़ा भारी राजभवन, राजभवन में कौन है, केवल एक केवल है और सब निकल गए, राजभवन में नहीं रहे, जहां पर वो इतना बड़ा भाई था। महाराज तो स्वर्ग हो गया, स्वर्ग धाम हो गया, और दो रानियां थी कौशल्या जी और सुमित्रा, वो दूसरी जगह चले, घर में कोई अकेले कितना कष्ट हो रहा है। वो भर जी के पास में गए, हमको बेटा यहीं पर रख लो नंदी गांव, उन्होंने उत्तर त्याग दिया, तुमने जैसे कर्म किए हैं
तुम्हारे तपस्या स्थली हो गई है,
तुम वहीं पर रख करके घुरो और मरो, आप पर तड़पते हुए एक बार मत मरो, झुलसते 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 तुम मरो, यही तुम्हारे लिए उचित, वहीं पर हो, राजभवन में रहो, जिस राजभवन को तुमने मांगा था, इस वन में जंगल में हमारे पास में तुम्हारे रहने का कोई भी अधिकार नहीं। क्या कैसी हो गई, दिखला नहीं, जो पागल हो गई, पागल होकर के सिर्फ और ये कुर्ते हुए घर, एक बार कभी मैया नहीं कहा, न देखने के लिए आए, तुमको कोई कष्ट हो तो राज दरबार में बतला देना, वहां से समस्त महारानी कहते ही कि व्यवस्था हो जाएगी, सब देवता खाना पीना सब, किंतु जहां प्रेम नहीं है वहां पर मन ही नहीं रहता, वहां पर मरना ही बल्कि यह होता है। तो ये कहते हैं से सती प्रेमवती, प्रेमवान से ही पति, वियोगी ये बाई से है, वियोग में भी परस्पर का ही तो सोचे, ये तो यथार्थ में प्रिया और प्रियतम है। आजकल किसी से प्रेम किया और लड़की की शादी दूसरी जगह हो रही है, सुन लिया किस परिस्थिति में हो रही है, लड़की की इच्छा के विरुद्ध भी हो रही है शादी, तब वहां पर जाएगा पिस्तौल लेते हुए, पहले लड़की को मार करके अपने को खत्म करके दोनों मर गए, वाह कैसा आनंद, कैसे जाएंगे वहां पर, फिर मिलेंगे कहां पर, स्वर्ग लोक में दोनों मिलेंगे, बड़े आराम से साथ में रहेंगे, क्या उनकी दुर्दशा होगी, बोल नहीं समझते हैं। और सबको की तरफ में किंतु जगत में प्रेमवती और प्रेमवान वही है जो दुख में भी उनका चित्त समझते हैं, कैसे इनका सुख हो, कैसा इनका सुख हो, परस्पर परस्पर की चिंता करते हैं,
ना जाने अपने दुख पांच छह प्रिय जन सुख सही दुई मिले अकेला। ऐसे यदि दोनों में प्रेम है तो एक दिन दोनों मिले, हमारा भी तुम्हारे प्रति ऐसा है, तुम्हारा भी ऐसा हमारे प्रति है, इसलिए हम अनुमान कर रहे हैं कि हम अब बहुत जल्द ही मिलने वाले हैं। राखते तुम्हार जीवन सेवी आमी नारायण तार सत्य नीति नीति तुम्हार सने पीड़ा करी पुनः जाएगी कहा तुम्हें माना हो मोर स्फूर्ती कहते तुम्हारा ये जीवन रखने के लिए मैं द्वारका में नहीं रहता, द्वारका में हमारा शरीर भले ही रहे मैं एकदम चला आता हूं ससुर की दुनिया पर वृंदावन और तुमसे मिलता हूं और उस समय मैं तुमको मनाता हूं, तुमको उठाता हूं, तुम्हारे केस बंधन करता हूं और तुम समझती है क्या इस रूपी है स्वप्न देख रहे हैं। ये कृष्ण कह रहे हैं तुम आशा ने क्रीड़ा करी, तुम लोगों के साथ में मिलता हूं जुलता हूं विलास करता हूं और इसके बाद में फिर मैं तुम लोग सोचते जारी कहां कृष्ण ये तो हमने स्वप्न देखा, स्वप्न नहीं ये स्फूर्ति नहीं ये सचमुच में मैं आता हूं तुम लोगों से क्रीड़ा करके और फिर मैं चला जाता हूं। मोर भाग्य मो विषय तुम्हार जे प्रेम है से प्रेम प्रमद परम प्रबल लुकैया माने सत्य कराए तुम सने प्रकट हुआ सत्वर। हमारे विषय में तुम्हारा जो प्रेम है महाप्रेम प्रेम की अंतिम दशा तक है वही प्रेम शीघ्र ही इतना प्रबल है हमें बांध करके तुम्हारे पास में लेकर के आएगा उसको ऐसा पूर्ण
विश्वास
इसी का वो अनुवाद जाते हुए दीपक जतो दुष्ट कंस पक्ष जादुओं के पक्ष दीपक में कंस दुष्ट कंस के जितने भी लोग थे कंस मारा गया उनके भाई मारे गए चारण मस्तिष्क मारा गया अब थोड़े से लोग कौन है जरासंध और कौन
कालजम
और उसका भाई
शिशु
सुजलाल हो गया दंत पत्र दंत पत्र है और भी दो चार है क्योंकि ब्रजवासियों पर संकट आने की दशा है अवस्था है यदि मैं ब्रज में रहूं आ जाऊं जरासंध वहीं आक्रमण करेगा और जितने ये हमारे विरोधी हैं वो सब वहीं पर वहां पर न तो किला है न युद्ध है न कुछ है सब ब्रजवासियों को चौपट करते इसलिए मैं वहां पर थोड़े दिन और रह करके सबको समाप्त करके मैं आने वाला ही हूं। से शत्रु हईते ब्रजजन राखीते ब्रजजन को रक्षा करने के लिए मैं नहीं आ रहा इसलिए मैं राज्य से राज्य में रहता हूं उदासीन हूं जैसे पानी में कमल का पत्ता होता है ऐसे में द्वारकाधीश इत्यादि का राज्य से हमारे कोई भी संबंध नहीं है। जवा स्त्री पुत्र धन है जो हमारा वहां पर स्त्रियां हैं 16108 पुत्र हैं एक एक से 10-10 और लड़कियां हैं एक और विपुल संपत्ति है जो ब्रह्मा और शंकर के लिए भी संभव है। वहां पर ये किस लिए तुम लोगों के लिए किस लिए तुम लोगों के किंतु कह रहे हैं कि किसके लिए जदुओं के उसको सांत्वना देने के लिए जदुगण संतोष लगी है किंतु जदुगण का संतोष ये कह रहे हैं किंतु तुम लोगों के लिए क्यों मैं तुम लोगों के लिए वृंदावन को छोड़ा तुम लोगों के लिए ही विवाह किया तुम लोगों के लिए ही जदुपुरी में हूं तुम लोग इस चीज को समझते नहीं यही प्रेम का बहुत ऊंचा तात्पर्य तुम्हार जी प्रेम गुण करे अमा आकर्षण आनी दे अमा दिन 10-20 पुनः आशी वृंदावने ब्रजबधु तुमासने विदर्श रजनी दिवस
इस प्रकार से 10-20 दिन में ही मैं सब काम समाप्त करके अब आने वाला ही हूँ। चैतन्य महाप्रभु इसी भावना के साथ में कृष्ण को रथ में बिठा करके इतना कहने के बाद कृष्ण राजी हो गए तो कृष्ण को लेकर के वृंदावन में वो आ रही हैं। यही रथ यात्रा का मूल तात्पर्य। सातों के हृदय में भी यदि यही रहे, चिरकाल से हम भगवान से भी छुड़े हुए हैं, उनके बिना हमारे सुख और शांति नहीं हो सकती, इसलिए गोपियां जैसा प्रेम हमारे हृदय में हो, ऐसा इतना उन्नत न हो तो भी भक्ति हो जिसे कि फिर भगवान से हमारा साक्षात्कार हो सके और उनकी हम सेवा में जा सके, यही हमारा स्वरूप है। जब तक हम वहां नहीं जाएंगे, वो कृष्ण नहीं मिलेंगे, तब तक में सुख और शांति नहीं होगी। ये ध्रुव एक निश्चित रूप में से जगत में आज तक कोई भी सुखी नहीं हुआ, इसका कोई भी प्रमाण नहीं। सुखी वही है जो कृष्ण के चरणों में इनका प्रेम पंचा बोलो
चंद्राय राधिकाय सदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय सर्वभक्ताय यं प्राव्रजन् तमस्ते तमतेश कृष्णं द्वैपायनो विगतकार्तर्या जिहव पुत्रेति तमेतया सर्वो
प्रेमवती सती प्रेमवती है और प्रेमवान वही है जो वियोग होने पर भी एक दूसरे का हित साधन कर अनिष्ट नहीं और इसीलिए अपना वो प्राण प्रत्याग नहीं करते, क्योंकि दूसरे को दूसरे भी इससे मरेंगे। यदि प्रेमी मर जाए तो प्रेमिका मर जाएगी और प्रेमिका मर जाएगी तो प्रेमी मर जाएगा उसके लिए, इसलिए दोनों दोनों के प्राण रखते हैं एक दूसरे के लिए और सब समय उनका कल्याण चाहते। इस जगत में ऐसा नहीं होता है, इस जगत में अपना स्वार्थ प्रधान होता है। यदि कोई वस्तु चिंतामणि हमारे हाथ में है और दूसरा उसको लेना चाहता है, भले चिंतामणि तो हम नष्ट करके फेंक देंगे किंतु दूसरों को नहीं देंगे, ये जगत का भाव है। वो प्रेमिका यदि हमको नहीं देती है तो भले ही मैं उसको भी समाप्त कर दूंगा, अपने भी समाप्त कर दूंगा, उसका ही उसका फलाई नहीं सोच। किंतु यहां पर कृष्ण कह रहे हैं तो अलग होने पर भी कृष्ण द्वारका से भी गोपियों का हित चाहते हैं और गोपिकाएं भी यहां से दूर रहते हुए भी उनका हित चाहते हैं। कृष्ण ने अंत में कहा, मैं आता हूं ब्रज में, तुम लोगों से मिलता हूं, किंतु तुम लोग प्रेम की अधिकता के कारण इसको स्फूर्ति या स्वप्न मानते, तो मैं आता हूं। जब कृष्ण ने कुछ ऐसे उदाहरण दिए और प्रमाण पुष्ट प्रमाण दिए तो गोपियों को विश्वास हो, तब गोपियां कुछ शांत हो गए। तब कृष्ण ने कहा, मेरे प्रज में न आने के बहुत से कारण हैं, उसमें प्रधान कारण तो अभी यह है, जरासंध बार बार आक्रमण कर रहा है, यदि मैं ब्रज में आ जाऊं तो जरासंध मैं जहां रहूंगा ब्रज में वहीं पर आक्रमण करके ब्रजवासियों को नष्ट कर देगा। मथुरा में कुछ साधन है जो ब्रज में उपलब्ध नहीं है, इसलिए वो वहां नहीं आ रहा। अब वो थोड़े से ही हैं जाटों के विपक्ष में, शिशुपाल अभी महाराज में उस समय शिशुपाल नहीं था, ये कंस मारा गया है, उनके भाई लोग मारे गए, ब्रज के जितने भी असुर थे वो सब मारे गए हैं, केशी अगासुर बगासुर ये सब मारे गए, उतना मारी गई उनका उनकी सेनाएं भी मारी गई हैं कंस के,
अब शंकर अभी कुछ कुछ मरे हैं और थोड़े से जो कुछ हैं, मैं कुछ दिनों में नहीं मार करके 10-20 दिन में ही आ जाऊंगा। विशेष करके तुम लोगों का हमारे प्रति, साधारण लोगों की हमारे प्रति जो भक्ति होती है बड़े सौभाग्य से होती है। इस जगत में भक्ति सबसे दुर्लभ चीज है, सब कुछ मिल सकता है भक्ति साधने में, और उस भक्ति में भी जो स्नेह की अवस्था है वो तो बहुत ही दुर्लभ है। वो यदि किसी को सौभाग्य से मिल जाए स्नेह, तो इसका मतलब वह स्नेह कृष्ण को आकर्षित करके उसके पास ही मिला दे। तो आप लोगों को भगवान यह दुर्लभ स्नेह भी आपको मिल गया है। अब इसलिए मैं श्रीता की यह प्रेम ही स्नेह ही हमको खेट करके हम लोगों से मिला देगा। यही उसका मतलब है, भक्ति ही भूतानम वही भक्ति ही भूतानम संबंध पाए कर सके। जब राशि मत स्नेह बहुत ही नाम बता बदापना, मैंने मुझे मिला देने वाला है, जरूर मिलाएगा। अर्थात भक्ति ही जीवों के लिए अमृत स्वरूप है। कर्म और ज्ञान ये यथार्थ में भगवान की प्राप्ति के उपाय नहीं है। कहीं कहीं पर कुछ उपयोगिता होने के कारण उनको सोपान के रूप में मान लिया गया। बहुत दूर से जो कर्म ज्ञान को लक्ष्य नहीं करता और जो ज्ञान भक्ति को लक्ष्य नहीं करता, ये दोनों वृथा। इसलिए कहते हैं भक्ति हमारे प्रति ही अमृत का कारण है, और इस भक्ति में यदि स्नेह किसी को हो गया साधन करते करते तो भगवान को जरूर प्राप्त होता। यही सब अर्थ प्रभु स्वरूप दर्शन रात्रि दिने करे बसी करे आश्रय। यही सब श्लोकों का अर्थ स्वरूप के साथ में प्रतिदिन रात्रि के समय में या दिन के समय में स्वरूप के साथ में मिल करके आस्वादन करते तरह का दर्शन। एक एक अर्थ एक एक शब्द शब्द का अर्थ विभिन्न प्रकार से करते। अब भक्ति में हम एक शब्द है भक्ति, और भक्ति का अर्थ क्या है? काय मन तन मन वचन से अनुकूल रूप में
जो कृष्ण का अनुशील
कृष्ण का अनुशील है ये भक्ति का। किंतु भक्ति शब्द से श्रद्धा से लेकर भाव और भाव से फिर प्रेम और प्रेम से लेकर के महाभाव तक ये सभी भक्ति शब्द का वाच्य, ये सभी भक्ति शब्द का। और इसका एक एक उदाहरण दें तो भक्ति रसामी सिंधु बन जाएगी। ऐसा ये भक्ति शब्द व्यापक
है,
इसमें प्रत्येक रस जितनी विचित्रता है ये सब कुछ इसमें आ जाएगी। और इन विचित्राओं के साथ में जब कृष्ण रहते हैं तब इन्हीं को कहता है भगवान। भगवत शब्द से ही भक्ति शब्द संबंधित है। आजकल जो शिव भक्ति, गणेश भक्ति, पितृभक्ति, मातृभक्ति, देशभक्ति, ये शब्द जो है औपचारिक है, जगत में भगवत संबंध से नहीं होने के कारण ये भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति कभी हो, शब्द का प्रयोग तभी होगा जब भगवान से संबंधित हो, तभी ये भक्ति शब्द, क्योंकि भगवत शब्द से ही बना है। इसलिए भक्ति का जहां तहां प्रयोग नहीं होना चाहिए। नित्य काले से ही भावे आविष्ट भैया श्लोक पढ़ी नाचे जगन्नाथ मुख भैया। नित्य के समय में चैतन्य महाप्रभु उन्हीं भावों को लेकर के हृदय में रख करके और जगन्नाथ के तरफ में देखते हुए इन भावों को आस्वादन करते हैं। एकदम उसमें निविष्ट हो जाते तदात्म भाव से, एकदम तदात्म हो जाते। स्वरूप गोसाई भाग्य
ना जाए पर सुख गोस्वामी के भाग्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रभु ते आविष्ट जार का है मनोभाव, माँ प्रभु जी राधा भाव में आविष्ट है, कभी कृष्ण में आविष्ट है और स्वर्ग दामोदर किस में आविष्ट है,
ललिता
महाप्रभु जी के भाव, तो ये किसके भाव, ये भी उसी के होकर E A is equal to B and B is equal to C, then A is equal to C. क्या समझे है? जब A B के बराबर है और B C के बराबर है तो A भी जरूर C के बराबर है, ऐसे ही इसलिए प्रभु में इनका चित्त सब समय आविष्ट है। प्रभु क्या सोच रहे हैं, प्रभु ये जो कह रहे हैं वाक्य, ये किस लिए, ये श्लोक जो उच्चारण कर रहे हैं किस लिए इसका उच्चारण कर रहे हैं, ये सबको विस्तृत रूप से विवेचन करते हैं। स्वरूप इंद्रिय प्रभु निज इंद्रिय, स्वरूप की इंद्रियों में प्रभु की इंद्रियां मिल गई है, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है भगवान की प्रति ऐसी मेरी भक्ति हो जो भक्ति विनोद तब आप नहीं भूल, मैं अपने इंद्रियों को कृष्ण के इंद्रियों में मिला दू, क्या वो कृष्ण है, अरे शरणागति में है, तब भगत विनोद ठाकुर आपने खुले तुम्हारे इच्छाएं वो इच्छाएं विषय, तुम्हारे इच्छाएं वो इच्छाएं विषय भगत विनोद तब
आपने खुले,
तुम्हारी इच्छा में ही अपनी इच्छा को मिला दे, तुम्हारी भावना में अपनी भावना को मिला दे, इसी को कहते हैं अनुगत। गुरु जी के प्रति भी ऐसा होना चाहिए, पहले यहीं से शिक्षा होगी, गुरु जी के भाव जैसे हैं हमारे भाव भी ठीक उसी कर लू। इधर भी सुना चक्रवर्ती ठाकुर जी ने गुरबस्तक में ये सब चीजें दी है, उसमें वैदिक भक्ति के रूप में भी दिया है और रतन व भक्ति के, हम कैसे ठाकुर जी की सेवा करें, महाप्रभु कीर्तन नित्य गीत वादित क्रमाध्यन मनसो रसेन रोमांच पंपाशु तरंग भाज, तरंग भाज मन तरंग से समन्वित, इनके हृदय में भी ये तरंगे तरंगायित होती है, किसने कैसे, महाप्रभु जी महाप्रभु कीर्तन नित्य गीत में इन्होंने अपने भावों को मिला दिया, जैसे महाप्रभु में रोमांच पंप पूर्वक होता है हमारे गुरु जी में भी, अच्छा अब गुरु जी में हम मिलाएंगे, मिलना तो बहुत कठिन है, तो भी उनके अनुगत के द्वारा जैसे वो कीर्तन करते हैं जैसे उनके भाव हैं, ऐसे ही भाव लाने का नाम गुरु पदाश्रय है। गुरु पदाश्रय मैंने क्या, कान फूकवाना गुरु का आश्रय लेना नहीं, कान फूक दिया गुरु जी ने दाइना कान दे दो और मैं फूक देता, जब भालू से कान लोग फूकवाते हैं पहले अच्छा चालू था, क्यों क्या जाने क्यों, जैसे इसके रोग सब दूर हो जाए, भालू गांव में आते थे होता था पहले, अभी भी है ना तो कम आते हैं किंतु पहले था, हम लोग के कान फुकवाए गए भालू से, उसको नाक में वो रस्सी लगा करके और सब ठीक रखते हैं, वो बहुत जोर से सांस लेते हैं, जानते हैं किस लिए, चीटी में उसके उसमें आ गया ना, और चीटी आ जाने से वो मरे, चीटी पकड़ लेगी नाक में तो बस, वो दो चीजें उनका भय करता है, आग का, यदि आग उसके रोल में लग गया तो बस, और भूसे की नहीं आगे, और दूसरा जो चीटी हाथी और ये जो हाथी से बस वो पहुंच जाए, इसलिए जोर से ऐसा, तो इसलिए वो भालू वाले होता कैसे चाहिए उनको, तो ऐसा कोई उपाय निकालते हैं जिससे कि तो वो साथ